शांति। सभी को वरदानी स्वरूप बनना है। वरदानी और फिर इससे भी आगे मास्टर वरदाता। जो लंबा काल अपने जीवन में वरदानों को अनुभव करते हैं वे दूसरों को वरदान देने वाले बन जाते हैं। हमारा जीवन सिद्धि स्वरूप भी है और वैसे ही जैसे भक्ति में हम सबकी जड़ मूर्तियां दूसरों को सिद्धि देती है। आप सबको पता हो सिद्धियों के लिए अधिकतर लोग शिव शक्तियों की उपासना करते हैं तो उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रैक्टिकल में यहां हम सभी सिद्धियों से संपन्न बने हैं। और एक मोटी सी बात पहले सभी को जाननी चाहिए, जो वाचा का कम प्रयोग करते हैं उन्हें वाक सिद्धि मिल जाती है, जो संकल्प बहुत कम चलाते हैं, जिन्होंने संकल्पों की स्पीड को धीमा कर दिया, जो आत्माएं व्यर्थ से मुक्त हो गई थोड़ा लंबा काल, उन्हें संकल्पों की सिद्धि मिल जाती है। लेकिन बाबा इस समय हमें वरदान दे रहे हैं। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चाएं करेंगे। मैं पहले दो बहुत सुंदर बातें आपको याद दिला दूं बाबा की। वरदानों में शक्ति है, आग को पानी में बदलने की। वरदानों में शक्ति है, आग जैसी समस्या हो, जलाने वाली समस्या, उसे पानी जैसी शीतल कर देती है। दूसरी बात जो हम सबको बहुत ध्यान रखनी है, इस पहली बात का प्रयोग करना है अपनी समस्याओं को समाप्त करने में, वरदानों को यूज करके। उस पर हम आगे चलेंगे। किसे वरदान धारण होते हैं? वरदान उस बुद्धि में धारण होते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। उनकी बुद्धि में वरदानों की धारणा हो जाती है। वरदान तो बाबा सबको देते हैं, परंतु वो धारण उन्हें होते हैं। बुद्धि योग्य पात्र उनका बनती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहे। आप सब जानते हैं ज्ञान को धारण करने की बुद्धि पवित्र वर्तन बाबा की मुरली में रोज आता है, और वरदानों को धारण करने वाली बुद्धि शक्तिशाली बुद्धि, ईश्वरीय नशे से भरपूर बुद्धि। ये बुद्धि हमारी मुख्य शक्ति है, बुद्धि ही धारणा शक्ति है, इसी में हम सब कुछ धारण करते हैं। बुद्धि ही विवेक शक्ति है, बुद्धि निर्णय शक्ति भी है, और बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम भी है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो हमें विशेष रूप से बुद्धि पर ध्यान देना है, और इसको बाबा के एक महावाक्य से और इसके महत्व को हम याद रखेंगे। तुम्हारी मुख्य साधना है बुद्धि को स्थिर करने की। ये बहुत सुंदर साधना है हमारी, हम बुद्धि को स्थिर कर दें और ये स्लोगन अपने पास रख लें, बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर दे। बुद्धि को भटका तो सबने दिया था, अब उसको एकाग्र कर देना, स्थिर कर देना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी आत्मा की पहचान है। बुद्धि के बारे में एक बात और मुझे याद आ गई, बहुत साल पहले सुनी थी, तब इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं था, धीरे धीरे पता चला। बाबा ने कहा जैसे जादूगर लोग हाथ की सफाई से अनेक कमाल दिखाते रहते हैं, होता कुछ नहीं है, केवल सफाई हाथ की, हाथ की सफाई से, बुद्धि की सफाई नहीं, हाथ की सफाई से जादूगर लोग कमाल दिखाते रहते हैं, तुम भी यदि अपनी बुद्धि की सफाई कर दो तो तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े कमाल होने लगेंगे। बहुत पहले की बात है, तब हम कम जानते थे बुद्धि को साफ कैसे करें, कोई चीज तो है नहीं जिसको मांझ के साफ कर दिया जाए। धीरे धीरे बाबा इस पर बहुत अच्छा प्रकाश हम सभी को मूल्यों में देते रहे हैं। पीछे तो बाबा ने यह भी कहा, तुम अपनी बुद्धि में बाबा को यदि बैठाना चाहते हो तो बुद्धि को उस योग्य बनाओ जिसमें भगवान बैठे। जिस बुद्धि में गंदगी होगी, जिस बुद्धि में व्यर्थ भरा होगा, जिस बुद्धि में बदले की भावना भरी होगी, उसमें बाबा कैसे बैठेगा। अब पहली बात मैं आपके सामने रखता हूं, सभी को, आप सभी बहुत अच्छा अच्छा चिंतन करते हैं, पुरानी बहने हैं सब, बहुतों का पुरुषार्थ बहुत सुंदर चलता होगा, भट्टियों में आकर स्वचिंतन करना चाहिए अपने से बातें। और एक बात जो मैं आजकल सबको कहता हूं, उस पर सभी न केवल चिंतन करेंगे लेकिन अपने पास लिखें भी उसको, यहाँ शांति में बैठ के, मेरा संगम युग कैसा बीता है, मैंने अपना संगम युग कैसे बिताया है, क्या वो सब कुछ करते हुए जो बाबा कहता है, उलझनों में बीता है, डरते हुए बीता है, या ईश्वरीय आनंदों में बीता है, बेफिक्र बादशाह बनकर जिए हैं या चिंताओं में जीवन बीता है, तेरे मेरे अलबेलेपन में जीवन बीता या ज्ञान और योग की मस्ती में ये यात्रा तय की है, कैसे पूर्ण किए हैं हमने अब तक के संगम युग के स्वर्ण दिन, गोल्डन डेज हैं ये। बहुत अच्छी तरह सभी अपने 10-20 साल के जीवन पर नजर डालना और फिर कैसे बिताएंगे हम संगम युग के अगले 10 वर्ष, यदि हमें 10 साल और मिल जाएं तो हम इन 10 वर्षों को ऐसे बिताएंगे, एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग करनी है पुरुषार्थ की। ये कहने से काम नहीं चलेगा, सेवाएं बहुत हैं, ये बहाना बाबा को स्वीकार नहीं है, सेवाएं बहुत होना हमारे श्रेष्ठ भाग्य की पहचान है, कोई गड़बड़ नहीं, सेवाएं तो और बहुत बढ़ेंगी। कभी बाबा साकार में कहते थे टीचर्स बहनों को, तुम एक सेंटर चलाने से डरती हो, एक एक को 10-10 सेंटर चलाने हैं, अब तो कितने कितने संभालती हैं बहने। तो जिन विश्व को संभालना है वो अपने को भी संभालना जान जाते हैं, और सेंटर्स तो बाबा संभालता है, हम सब तो बैठे हैं केवल, बैठे हैं केवल, निमित्त हैं, सब कुछ कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल तो ऊपर रहता है ना बाबा के पास। तो अपने जीवन का मैं आपको एक छोटी सी प्लानिंग देना चाहता हूं। सभी अपने पुरुषार्थ के लिए तीन तीन मास की प्लानिंग करें, बहुत सिंपल प्लानिंग, तीन बातों की प्लानिंग कर लें। मैं जस्ट अंदाज के लिए बता रहा हूं, आप अपने तीन पॉइंट रख सकते हैं। मुझे तीन मास में पूर्ण संतुष्ट मणि बनकर रहना है, एक बात धारणा की। दो तीन स्वमान ले लें, मुझे इन स्वमानों का बहुत अच्छी तरह रोज अभ्यास करना है। योग अभ्यास के लिए कुछ लक्ष्य रख लें और कोई ठोस पॉइंट ले लें, जैसे मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं और मुझे तीन मास तक योग रोज चार घंटे करना है, कुछ कर्म में कुछ बैठकर। आप सभी एक मनोविज्ञान की ब्रेन की शक्तियों की सूक्ष्म बात याद रखेंगे, जब हम कोई दृढ़ लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य को सवेरे उठकर आप लिख लें, उठते ही लिख दें एक लाइन में, मुझे तीन मास में ये करना है, सच्चे मन से लिखेंगे तो क्या होगा। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं, जिनके जीवन में समस्याएं बहुत हैं उनको भी सिखा सकते हैं। तो ब्रेन की सारी शक्तियां उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में लग जाएंगी। लक्ष्य की दृढ़ता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन में कुछ करने का इरादा हो, जीवन ऐसे ही न चलता रहे। आप सभी ने अपने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है, शायद आपको पता नहीं चलता। जब संसार आपको देखेगा थोड़े और दिन, थोड़े से दिन आ गए हम पहुंच गए, तो आपके त्याग की यही गुणगान करेगा। हमें केवल ये करना है, त्याग केवल ये नहीं कि आप अपना घर छोड़ के सेंटर में आ गई। किसी को हो सकता अपने घर से बड़ा सेंटर मिल गया हो, उसको हम त्याग नहीं कह रहे हैं। सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देना, पवित्र जीवन अपना लेना, सफेद वस्त्र धारण कर लेना और सब बातें छोड़ देना, ये सब बहुत बड़े त्याग हैं। मैं जो कुछ इस त्याग के बारे में आपको कहना चाहता हूं, सब बहुत अच्छा चिंतन करें, हमारा त्याग निष्फल न जाए। जब हम इस संसार से चलें तो हम आनंदित होकर चलें, जिसलिए जीवन बलिहार किया था हमने वो सब कर लिया। हमारे मन से आवाज ही न निकले कि बाकी रह गया, कर लिया जो हम करना चाहते थे, जिसलिए ये त्याग भरा जीवन अपनाया था, जिसलिए ये तपस्या भरा जीवन अपनाया था, वो हमने कर लिया। सभी ऐसी अपने अंदर दृढ़ता लाएंगे, कुछ करने का इरादा, कुछ करने की उमंग जीवन में सदा रहे, तो अनेक बातों से बच जाएंगे। बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य है जो आप सबके सेंटर्स में लिखा रहता है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो, याद है आगे, कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। बहुत सुंदर बात है ये। हमारा लक्ष्य सचमुच बहुत महान है। मुझे आजकल जो फीलिंग होती है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बहने उसको जरा उसी रूप से ग्रहण करें, संगम युग समाप्ति की ओर है। बाबा की ये बात सुन सुन के हम सब हो तो गए हैं पक्के, समझते हैं ना पक्के का। लेकिन बाबा ने पिछले सीजन में भी एक बात बार बार कही, नाजुक समय आ रहा है, याद होगा आपको, सब मुरलियां तो सुनाती हैं। बात केवल विनाश की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नाजुक समय की। एक दिन आएगा, एक दिन वो भी आएगा जब ये धरती बहुत ज्यादा खाली हो जाएगी। खाली ऐसे ही नहीं होती, बहुत आपदा विपदा भरा वो काल होगा। 5-10 साल, 2-4 दिन नहीं, कम से कम 10 साल। ऐसे में आप सभी को, हम सभी को, पर मैं आप बहनों को विशेष रूप से कहूंगा, अनेक महान आत्माएं इष्ट देवी के रूप में प्रख्यात हो जाएंगी। बाबा की ये बात आपने सुनी है कि जब विनाश होगा तो आप अपने बच्चों को बहुत साक्षात्कार में, मनोरंजन में रखेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे विनाश हो गया, क्योंकि हम सभी विनाश काल में महान कर्तव्यों में लग जाएंगे, संसार को वाइब्रेशंस देने में लग जाएंगे, अनेक आत्माओं के सहारा दाता बन जाएंगे, अनेक आत्माओं के विघ्न विनाशक बन जाएंगे। यही वरदान सबको प्राप्त करने हैं बाबा से। और आप सभी को ये भी पता हो, बाबा यों तो सभी को सारे वरदान देता है, परंतु किसी किसी को कोई विशेष वरदान भी प्राप्त है। अपने उस वरदान को पहचाने, इसलिए अपने को साधारण नहीं समझना है। हमें बाबा से कई वरदान और कई विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। बाबा कहा करते थे शुरू में, अव्यक्त बाबा, अभी तुम्हें अपने श्रेष्ठ भाग्य का एहसास नहीं है, एक दिन आएगा जब संसार तुम्हारे भाग्य का गुणगान करेगा और तुम्हें पता चलेगा हम ऐसे हैं क्या। तब कहेंगे, वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि हम ऐसे हैं। इसलिए अपने को साधारण नहीं समझना है, महान लक्ष्य लेकर चलना है और महान कार्यों के लिए ही हम सबका जन्म हुआ है। आपको कुछ महान बड़े बड़े काम करने हैं, करने हैं, करेंगे वही। अब ध्यान से सुनेंगे आप, आने वाले समय में सेवाएं होंगी दृष्टि से, आने वाले समय में सेवाएं वो करेंगे जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर कर लिया है। आने वाला समय योगियों का होगा, ज्ञान कोर्स घंटों नहीं 5-7 मिनट में दिया जाया करेगा। हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि हम किसी को कहेंगे, तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो, तुम यहाँ बैठे हो, ज्योति हो, बस दृष्टि दी और वो आत्मा हो गए, हो गया कोर्स आत्मा का, पहला लेसन पूरा हो जाएगा, इतना ही होगा बस, लंबा चौड़ा लेसन नहीं चलेगा। लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जो लंबा काल आत्मभिमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं। उनके शब्दों में दूसरों को अनुभव कराने की शक्ति होगी, उन्हें वरदान हो जाएगा कि जो वो कहेंगे उसे ही लोग फटाफट फॉलो करेंगे। मैं एक बात, बहुत सारी समस्याएं लोगों की देखकर सोचता हूँ, मुझे फीलिंग होती है आजकल संसार में आप सबके पास ऐसे लोग आते होंगे, युवक भी, जिनको डिप्रेशन हो रहा है, जिनको रात को नींद नहीं आती, जिनकी मेमोरी पावर समाप्त होती जा रही है, वो पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ भी याद नहीं होता। आजकल बहुत सारे कारणों से ये मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दिखता है आपको, आते होंगे बहुत लोग। मुझे ऐसा आभास होता है कि ये 5 साल 14 से 18 तक संसार के लिए बहुत भयानक होंगे। रोग, मानसिक समस्याएं और बहुत सारी परिवारों में समस्याएं, व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं बढ़ती जाएंगी और ऐसा हो जाएगा कि संसार के आधे लोग यानी करोड़ों लोग रात को सो नहीं पाएंगे। आप सबको क्या करना होगा? वो फोन करेंगे आपको 12 बजे, दीदी नींद नहीं आ रही है। आप कहेंगे मेरी भी नींद खराब कर दी, 12 बजे फोन कर दिया मुझे। आपको फोन आते रहेंगे, किसी का 1 बजे आया, फिर 1:30 बजे, फिर 2 बजे, आपको भी सोने नहीं देंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सोच ले क्या करना पड़ेगा। तैयार करें अपने को इस महान कार्य के लिए, जहां दवाई मनुष्य को सुला नहीं पाएंगी। मैं पूर्वज हूं, लंबे समय से ये अभ्यास बढ़ाते चले आप, तो क्या होगा? इस बात की गहराई को सभी बहनें समझने की कोशिश करना, जो अपने को पूर्वज मानेंगे, केवल संकल्प की बात नहीं, स्वीकार कर ले मैं पूर्वज हूं, तो सभी उनको फॉलो करेंगे। जो भी आप में से इस सीक्रेट को समझ ले, ये रहस्य है, तो क्या करेंगे? रोज क्या हमें करना पड़ेगा? मैं पूर्वज हूं, बाबा से योग लगाकर सारे संसार को वाइब्रेशंस देकर 5 मिनट जस संकल्प करेंगे, हमारी सारी वंशावली अब बाबा की गोद में सो जाओ और सबको नींद आने लगेगी। ये काम महान आत्माओं को करना है। एक सूक्ष्म रहस्य और जो सभी को जानना चाहिए, मुझे इसकी फीलिंग है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, कि पिछले कुछ मास से हरेक के ब्रेन में, आत्मा में क्या होने लगा है? जो कुछ जन्म जन्म का भरा हुआ है द्वापर युग से, विकार विकर्म, बहुत पाप कर लिए हैं लोगों ने, आत्माओं ने अति पाप कर दिए हैं, जो अब तक दबे हुए थे, अब तक मर्ज थे, वो इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं। तो क्या होगा, क्या हो रहा है? ब्रेन इतना एक्टिवेट हो जाएगा, इतना जग जाएगा कि रात को भी वो शांत नहीं हो पाएगा, इसलिए सोएंगे नहीं। नींद माना ब्रेन शांत। तो हमें वाइब्रेशंस देकर उनके ब्रेन को शांत करना होगा। मेरे पास आते हैं लोग, नींद नहीं आती। मैं पूछता हूं क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं। कोई चिंता है? कोई नहीं। कोई टेंशन है? नहीं। नींद आ रही है, जाएंगे सोने, लेटते ही फ्रेश। जो नींद आ रही थी वो भी गायब। कुछ सोच नहीं रहे हैं पर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ब्रेन हाइपर एक्टिव होता जाता है। हाइपर एक्टिव विकारों के और विकर्मों के कारण। इसलिए आप सभी अपने महान कर्तव्यों को पहचान कर अपना लक्ष्य इतना महान बना दें कि व्यर्थ के लिए समय ही न रहे। योग का बल स्वयं में भरना है, योग का बल और प्योरिटी का बल, ये दो शक्तियां ही संसार की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। प्योरिटी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, मैं इतना कहूंगा कोई आत्मा बहुत पवित्र भी हो लेकिन यदि उसके मन में हल्के संकल्प चलते हैं, कामकाज के संकल्प चल रहे हैं सारा दिन, किसी का परचिंतन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसकी प्योरिटी की शक्ति क्षीण हो जाती है। उसके मस्तक पर पवित्रता का तेज नहीं आएगा भले वो बहुत पवित्र हो। जो दूसरी पवित्रता है वो संपूर्ण रूप से धारण कर ली हो पर संकल्प महान नहीं तो प्योरिटी बल नहीं बनती। किसी को क्रोध आता हो, किसी में मैंपन बहुत हो तो प्योरिटी उनके लिए शक्ति नहीं बनती। तो ये दो शक्तियां पावर ऑफ प्योरिटी और योग, दोनों को बढ़ाते चलना है तब हम महान कार्य संपन्न कर सकेंगे। कई काम आप सबको करने हैं, बाबा की मुरलियों में आ चुके हैं, अब के दुख तो चींटी के समान हैं, इस संसार में तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे और हमें मास्टर दुखहर्ता बनकर सभी के दुख हरने होंगे। आ रहा है ना आजकल मुरलियों में, अव्यक्त में भी आया कल, हमें मास्टर दुखहर्ता बनकर सभी के दुख हरने होंगे। ये संसार विघ्नों की चपेट में आ जाएगा, व्यक्तिगत विघ्न की बात छोड़ो, सारा संसार में विघ्नों की अग्नि जलने लगेगी, हमें सारे संसार के विघ्नों को हरना होगा। और क्या होगा, विनाश काल में आत्माएं भयभीत बहुत होंगी, डर, हमें सबको निर्भय बनाना होगा। ये बड़े बड़े काम करने हैं, और भी बहुत बड़े काम हैं। एक और काम मैं आपको सुना देता हूं, मान लो कहीं एटम बम गिरा दिया गया है, आजकल एटम बम इतने पावरफुल हैं कि एक ही साथ 20-50 करोड़ लोग मारे गए, मान लो 20 करोड़ लोग मर गए, वो आत्माएं ऊपर आकाश में सूक्ष्म शरीर में भटकती होंगी, उनकी निगेटिव एनर्जी नीचे वालों को बड़ा कष्ट देगी, हमें योग के वाइब्रेशंस देकर उन्हें शांत करना होगा, उन्हें मुक्तिधाम की ओर भेजना होगा। ये सबसे बड़ा काम होगा, आत्माओं को मुक्ति का वरदान देना, क्योंकि जो एटम बम और हाइड्रोजन बम से विनाश होगा उसमें उनका न पुनर्जन्म होगा, कोई बचेगा ही नहीं, और करोड़ों करोड़ों आत्माएं अशरीरी होकर आकाश में भटकने लगेंगी हमारे ऊपर। अपने को सेफ भी रखना होगा और उन्हें मुक्ति का राह ही नहीं दिखानी, वाइब्रेशंस देखकर योग की शक्ति से उनके चित्त को शांत करके घर की ओर भेजना होगा। ये बड़े काम सबको करने हैं। और आप सबको ये भी पता हो, जहां जहां आप रहती हैं, जब विनाश होगा उस स्थान की सुरक्षा आपकी उपस्थिति ही करेगी। जहां थोड़ी भी बहुत पवित्र आत्माएं होंगी उनके वाइब्रेशन से, प्रकृति से और बहुत सारी चीजों से अनेक लोगों की सुरक्षा होगी। बाबा की मुरलियों में ये बातें आप सुनते होंगे, जो बाबा से कंबाइंड हैं, प्रकृति भी उनकी सुरक्षा करेगी, और जहां तक उनके वाइब्रेशंस फैलेंगे प्रकृति वहां तक सेफ रखेगी। तो लक्ष्य बना लें, हमें बाबा के महान कार्य करने हैं, हमें संसार के काम आना है। चिंतन में लाएं, बाबा के काम आ गए हम सब। सबने बाबा के यज्ञ खोले और उनको चला रहे हैं, ये भगवान को सहयोग, इसके रिटर्न में सबको जन्म जन्म सहयोग मिलेगा द्वापर युग से भी। लेकिन अब लक्ष्य बना लें, समय की जो चुनौती होगी, समय की जो मांग होगी, हमें वो पूर्ण करना होगा अच्छे योगी बनकर। फिर वही बात दोहराता हूं, ये एक्सक्यूज नहीं, ये बहाना नहीं कि हम बहुत बिजी हैं, सेवाएं इतनी हो गई कि योग का टाइम नहीं मिलता, ये नहीं, ये तो गृहस्थी कहेंगे आप सब। नहीं, योग का टाइम बहुत है, केवल करना की इच्छा होनी चाहिए। मेरे शायद इस संकल्प से आप सहमत होंगे, योग का टाइम बहुत है, केवल गुड प्लानिंग होनी चाहिए। कैसे वरदान लेंगे बाबा से, आप सब इस विधि को रोज एक बार अपनाना, इससे बहुत सुख मिलता है आत्मा को, अंदर से प्रेरणाएं मिलेंगी हम सबको। और वो विधि है अपने को फील करना, मैं सूक्ष्म लोक में हूं, बाप दादा सामने हैं। इस योग की विधि को आप सब स्टूडेंट से भी कराएं और खुद भी करें, खुद दो बार कर लें सवेरे शाम, बीच में भी कभी भी कर सकते हैं। सूक्ष्म लोक में हूं, सामने बाप दादा हैं, बाप दादा को बहुत स्पष्ट देखना है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे बाबा, जैसे बाबा बहुत डिवाइन, बाबा के अंग अंग से किरणें फैल रही हैं और मस्तक में महाज्योति चमक रही है। बहुत पावरफुल योग होगा ये, इसे परम धाम की स्थिति बीज रूप पावरफुल वो बहुत सहज हो जाएगी। फिर अभ्यास करेंगे कि बाबा ने अपनी हजार भुजाएं ऐसे मेरे सिर के ऊपर फैला दी और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। इससे क्या फायदा होगा, बहुतों में जो इनसिक्योर फीलिंग है, डर कहीं कुछ हो न जाए हमारे जीवन में, वो खत्म होता जाएगा। फिर बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, और फिर बाबा को थैंक्स देना। रोज तीन वरदान बाबा से लेने हैं, ये बाबा की मुरली में है, रोज अमृत वेले वरदान लो, स्वीकार करो और दिन में उनको स्मृति रखो और फिर यूज करो। मैं विधि बता देता हूं आपको, कई साल पहले, 10 साल हो गए होंगे, ये महावाक्य हैं बाबा के। तो सवेरे योग के समय या उठते ही, इससे पहले मैं आप सबको एक बात और कह दूं, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उसे अपना पहला संकल्प बना दो, क्योंकि रोज सवेरे 10 मिनट, पहले 10 मिनट, आंख खुलने पर 10 मिनट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन जगा रहता है, जो संकल्प हम उसे दे देंगे बस वही करेगा, वो वही होगा, उसमें पावर है। बाबा को उठते ही गुड मॉर्निंग करने के साथ, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, संकल्प कर दो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, खुले मन से, बाबा को कहो, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी, आपने मुझे श्रेष्ठ जीवन दिया, आपने मुझे अनेक कलाएं आपके पास है उनका वर्णन कर दो, ऐसे अच्छे संकल्प। आपको सफलता चाहिए, उठते ही सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको भय बहुत लगता है, मैं निर्भय हूँ, पहला संकल्प बनाओ उसको। कुछ बहनों को भय बहुत है, भय से बचना है, भय के अनेक कारण हैं। मैं बिल्कुल साफ सुना दूं आपको, दो बहनें आई अभी अभी की बात है, इतना डर उनको उनके चेहरे पर आ गया था। क्या डर? मौत का, अपनी मौत का नहीं। अगर सुन लिया आज कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो इनकी सारी रात गई, अगर कोई अर्थी देख लें तो बस बुरा हाल एक मास, अगर कहीं अखबार में भी पढ़ लिया किसी की मृत्यु हुई है तो मरने वाला वो मरा, परेशान ये, बचेंगे इन सबसे? ये क्यों है? आप सबके पास ये केस आएंगे सेंटरों में, पूर्व जन्मों में। अगर मृत्यु में बहुत कष्ट हुआ है तो वो अंतर मन में भर गया था और वो जागृत हो रहा है तो भय हो गया है। जबकि हम जानते हैं हमारे लिए मृत्यु क्या है, रोज ही मरते हैं, हम तो कितनी बार मरते हैं रोज, ऐसा रीरी होना माना मरना, हमारे लिए मृत्यु कुछ नहीं है। लेकिन इसका भय, मुर्दों से डरती हैं बहनें। मुर्दा कुछ करता है क्या? मुर्दा पकड़ेगा खड़ा होके, हाथ उठाएगा, मारेगा आपको? मुर्दे में तो कुछ है ही नहीं, उससे क्या डरना? बाबा ने कहा तुम्हें मुर्दों के ऊपर से चलना होगा, डरेंगे तो कैसे चलेंगे। भुज में जब भूकंप हुआ, कोई बैठी हो यहाँ बहने, बहनों को मुर्दों के ऊपर से जाके कंबल लाने पड़े थे ऊपर से निकाल के, क्योंकि ठंड बहुत थी। बैठी है ना उधर की बहने, ठंड बहुत थी, डेड बॉडी पड़े थे, कहां से जाएं, उनके ऊपर से ही चली गई। तब तो चली गई, बाद में डर लगा पकड़ न ले मुर्दे हमें, मुर्दे पकड़ते हैं क्या? पकड़ेंगे तो मुर्दे कैसे? मैं कह रहा था आपको, रोज सवेरे सुंदर संकल्प करो, आत्माओं का आह्वान करो। जो बहने कहती हैं हमारी क्लास में मुरली में कम भाई बहने आते हैं, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो और सीन देखो, आज हमारा क्लास का हॉल सब भाई बहनों से भरा हुआ है, मैं मुरली सुना रही हूँ, रोज करो, कुछ ही दिन में गुड रिजल्ट आने लगेगा। क्योंकि रोज सोचते हैं, उठते ही संकल्प आता है, कोई आता ही नहीं मुरली सुनने, तो जो आने वाले उनको भी संकल्प आता है, नहीं जाएंगे, उठते ही संकल्प करो बहुत आएंगे। आह्वान कर दो आत्माओं का, आपको पता होना चाहिए आपके संकल्पों में बहुत शक्ति है, नोट कर लो बहने, हमारे संकल्पों में शक्ति है सब कुछ करने की। ये बाबा के महावाक्य हैं, तुम्हारे संकल्पों में शक्ति है सब कुछ करने की, अपनी शक्ति को पहचाने और यूज करें। हम साधारण नहीं हैं, जो हम संकल्प करते हैं वो रंग लाता है।
ॐ शांति
शांति,
ॐ शांति
शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पुण्य सवेरा अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
संकल्पों में शक्ति है सब कुछ करने की, अपनी शक्ति को पहचाने और यूज करें। हम साधारण नहीं हैं, जो हम संकल्प करते हैं वो रंग लाता है। हमारे संकल्प खाली जा ही नहीं रहे हैं, हम उल्टा सोचते हैं वो उल्टा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छा काम करेंगे। आप संकल्प कर दो, मैं इष्ट देवी हूँ, जिसको मैं कोर्स दूंगी वो बाबा का बच्चा बनेगा ही। मैं तो बहुतों को कोर्स दिया, कोई ठहरता ही नहीं, अंदर में समा गई है ये बात, इसको निकाल दो। लेकिन साथ में स्वमान, मैं इष्ट देवी हूँ, पूर्वज हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं जिसको ज्ञान दूंगी वो बाबा का बनेगा ही। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो हम अपनी संकल्प शक्ति का यूज करें। तो सवेरे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर महसूस करें, बाबा ने तिलक लगाया और तीन वरदान विशेष रूप से दिए, विजयी भव। एक एक ले सकते हैं आप, सात सात दिन के लिए, सात दिन तक एक वरदान चलाओ। रोज सवेरे बाबा ने तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। विजय का अर्थ होता है माया पर विजय, परिस्थितियों पर विजय। फिर दूसरा वरदान, निर्विघ्न भव और विघ्न विनाशक भव। और तीसरा वरदान, सफलता मूर्त भव। मैं इसमें एक उदाहरण दूंगा आपको। सवेरे वरदान लिया बाबा से, विघ्न विनाशक भव। अब इसमें विश्वास कर लें, मुझे बाबा से विघ्न विनाशक का वरदान मिल गया है, ये वरदान मेरे पास है। दिन में दो चार बार ये याद आ जाए। फिर कोई माता आपके पास आई, दीदी बहुत विघ्न चल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, उसको बैठाओ सामने, कहो योग में बैठो, उसको दृष्टि दो और याद करो मुझे बाबा से वरदान मिला है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। उसे दृष्टि दो, संकल्प करो, इसका ये विघ्न नष्ट हो जाए और आपको अनुभव होने लगेंगे कि आपकी इस दृष्टि और संकल्प से लोगों के विघ्न नष्ट होने लगे। धीरे 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 होगा, आपको फीलिंग होने लगेगी, अवेयरनेस हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा कि मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। अब इसको बढ़ाते चलना, इसमें योग भी चाहिए। देखिए, किसी को भी कोई वरदान तब तक नहीं मिल सकता, बिल्कुल ओपन बात, जब तक योग 4 घंटे न हो। कम से कम 4 घंटे से ज्यादा वालों को वरदानों की बहुत गुड फीलिंग होगी। अपने योग की प्लानिंग करना, बैठ के भी, कर्म में ज्यादा। भूतों के साथ क्या होता है, मान लो 4 से 4:45 योग किया भी, लेकिन 4:45 से मान लो आपकी सेंटर में 6:30 बजे भाई बहने आते हैं, 1.5 घंटा तो है ना। इस 1.5 घंटे को भी अच्छी स्थिति में बिताना है। आपकी वो 1.5 घंटे की स्थिति मुरली पर प्रभाव डालेगी। मान लो आपने 500 रूपों का अभ्यास किया, आपने अच्छे स्वमानों का अभ्यास किया, तो जब आप मुरली सुनाएंगे, आपके बोल में वो पावर होगी कि सभी को आभास होगा जैसे बाबा स्वयं बोल रहा है, जैसे बहुत शक्तिशाली आत्मा बोल रही है। आपके क्लासरूम में वाइब्रेशंस छा जाएंगे। ऐसी एक प्लानिंग करो बहुत अच्छी, जिसे बाबा कहते हैं मन का टाइम टेबल बनाओ। 1 पॉइंट प्रोग्राम भी आप ले सकते हैं। आज अभ्यास ले लिया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, आत्मा चमकती हुई सूर्य के समान, आज मुझे सारा दिन ये अभ्यास करना है। एक ही अभ्यास को करते रहो सारा दिन कामकाज में, बहुत अच्छा योग हो जाएगा ये। तो इस तरह वरदानों को धारण करना है, यूज करना है। रोज यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, अंत में अनेकों को विघ्नों से मुक्त करेंगे एक साथ। और फिर ये होगा कि एक जगह बैठकर ही संसार को वाइब्रेशंस देंगे और अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों को विघ्नों से मुक्त करेंगे। मैं आपको एक और बहुत अच्छा संकल्प देना चाहता हूँ। बहुत बहने, मैं साफ कहता हूँ, मुझे देखकर ही पता चलता है, बहुत बहने बहुत पवित्र हैं, सचमुच जैसे देवी हैं इस धरा पर। मैं बाबा की एक चीज सुनाता हूँ आपको, आप में से जो भी चाहो उसको अपना लक्ष्य बना लेना। 1975 में अव्यक्त बाबा ने छोटा सा संदेश भेजा था, गुलजार दादी यहीं थी, उनके माध्यम से ही वो संदेश, छोटा सा, लेकिन आप सुने कितना सुंदर वो संदेश है। बाबा ने कहा, विनाश काल में तुम्हारे द्वार पर एक साथ बीमार लोगों की भीड़ आएगी, तुम उन्हें दृष्टि देंगे और वो रोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये काम उनके द्वारा होगा जिन्होंने अपनी स्थिति को संपूर्ण निर्विकारी बनाया होगा। निर्विकारी शब्द थोड़ा बड़ा है, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं जिसमें हो, न ईर्ष्या द्वेष नफरत कुछ नहीं, कल्याणकारी भावना, चित्त निर्मल। अब चुन लें आप इस महान कार्य को अपने लिए। दृष्टि देंगे, जहां तक दृष्टि के वाइब्रेशंस जाएंगे सभी लोग निरोग हो जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। दुखी लोग आपके पास आएंगे, वो समय आ रहा है। लोग ये कहेंगे, मुझे अपने सेंटर का पानी पिला दो, मैं मुक्त हो जाऊं। लोग ये कहेंगे, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमें दृष्टि दे दो, हमें अपने सेंटर में बैठने दो 10 मिनट, दुख समाप्त हो जाएंगे। सबको अपने को ऐसा महान बनाना है, अपने अपने सेंटर्स को भी तीर्थ बना देना है, तीर्थ। और ये काम आपको करना ही है, अब नहीं करेंगे तो समय कराएगा, लेकिन तब बहुत पावरफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके लिए लंबे काल की साधनाओं की जरूरत होती है। अपने जीवन को भी सभी विघ्नों से मुक्त रखें। आप कहेंगे अपने हाथ में है क्या? अपने ही हाथ में है। छोटी बातों को समस्या समझना, यही तो समस्या है। बातें विघन हैं ही नहीं, बातें बहुत छोटी है। देखो मैं जो याद रखता हूँ, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो हम हैं। इस देवियां बड़ी होती हैं या बातें, पूर्वज बड़े हैं या छोटी बातें, ये बातें कुछ नहीं हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य इतना महान बन जाए कि ये सब समस्याएं हमें खेल लगें, जो कल मुरली में था, आपदाएं भी मनोरंजन लगें। ये है मास्टर रचयिता की स्थिति। बहुत बड़ी चीज कही बाबा ने। तो सभी भट्टी में बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, और कोई भी एक वरदान ले लो बाबा से, लेने तो सारे हैं, पर किसी एक में एक्सपर्ट, कि दुखी मेरे सामने आएंगे, सुखी होकर जाएंगे, विघ्न लेकर आएंगे, विघ्न मुक्त होकर जाएंगे, या रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे, भयभीत आएंगे और शिव शक्ति बनकर वापिस जाएंगे। कोई भी एक विशेष रूप से ले लें और अपने जीवन को महान बनाएं, क्योंकि आप सब तो वैसे भी पालना करने वाली आत्माएं हो। जैसी आपकी स्थिति वैसी ही सबकी पालना होगी, और वाइब्रेशन से संसार की पालना करनी है। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी बहनों को देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास समस्याएं आती हैं बहुत लोगों की, तो मैं देखता हूँ कि हमारी बहनें कितनी महान हैं। और नशे की बात सुना दूं, वैसे कभी कोई रास्ते में पूछता है ना, ट्रेन में प्लेन में, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं वो, मैंने कहा हमारा तो परिवार बहुत बड़ा, हमारी बहनें तो इष्ट देवी हैं सारी। एक बहन, मैं भट्टी के लिए जा रहा था तो मेरे से पूछा कौन कौन आएंगे आपके साथ। अब मैं तो इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, मैं अकेला जा रहा था, फिर भी मैंने कहा 5-6 लोग आ रहे हैं। कहा 5-6 लोग? मैंने कहा तीनों तो माताएं हैं, 2 बड़े बाप हैं, और मैंने सुना दिया, है ना हमारा परिवार ऐसा जिनके बाप सबसे बड़े, एक भाग्य विधाता, दूसरा सर्वशक्तिवान, जिनके परिवार में सब महान आत्माएं। कहीं संसार में ऐसा होता ही नहीं कि ऐसे हॉल में 2000 पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं बैठी हों, संसार में कहीं नहीं होता। तो सभी बहुत महान हैं, साधारण नहीं, बहुत शक्तिशाली हैं। फिर से याद दिला दूं, लास्ट संकल्प, अपनी संकल्प शक्ति को पहचाने, उसे यूज करें। ओम शांति।